सत्रहवीं कारिका के अंत में कहा था न क्रियायै वावधार्यताम, माने क्रिया के साथ ही अन्वय का अवधारण करना चाहिए, निश्चय अवधारण करना चाहिए, माने निश्चय करना चाहिए। तो वहाँ जो क्रियायै व ये कहा गया उसी का भाव बता रहे हैं, कहते हैं कि क्रियायै वेति अयम भाव, ये भाव है इसका क्या कि भूवादि सूत्रादिषु प्रायशः क्रिया शब्देन भावनाभ्यपदेशात्। क्रिया शब्द जो है उस क्रिया शब्द का भावना ही व्यपदेश है, यदि भावना का व्यपदेश क्रिया शब्देन भवति, भावना का व्यपदेश क्रिया शब्द के द्वारा होता है। भावना का व्यपदेश माने भावना का व्यवहार, व्यपदेश माने नाम भी आप कह सकते हैं कि भावना नाम को, भावना भावना के नाम को, या भावना भावना वाला नाम जो है, भावना शब्द से कहे जाने वाला जो नाम है उसका क्रिया शब्देन व्यवहारो भवति, क्रिया शब्द से भी व्यवहार होता, माने क्रिया और भावना दोनों पर्यायवाची हैं, आप इस चीज को जानते हैं। यहाँ पहले आप ये समझ लीजिए कि क्रिया शब्द की दो उत्पत्ति की जाती है, दो अर्थ उसके लिए जाते हैं। एक तो यह है कि क्रियते इति क्रिया, क्रियते इति क्रिया ऐसी व्युत्पत्ति करेंगे तो क्रिया का अर्थ हो जाएगा फल, ठीक है। और अच्छा, ये क्रियते इति क्रिया वाला जो फल अर्थ वाला क्रिया है इसको कहते हैं यौगिक क्रिया शब्द, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय के योग माने संबंध से बनने वाला जो शब्द है उसको यौगिक शब्द कहा जाता है। तो क्रियते इति क्रिया अर्थात फलम, ये इस अर्थ में जो क्रिया शब्द है वह यौगिक शब्द माना जाता है। दूसरा एक क्रिया शब्द है रूढ़ शब्द, उस रूढ़ क्रिया शब्द में जिसको आप पारिभाषिक कह लीजिए या संज्ञा शब्द कह लीजिए या सांकेतिक शब्द कह लीजिए, तो वह भी एक क्रिया शब्द है। तो क्रिया शब्द दो प्रकार का हो गया, रूढ़ क्रिया शब्द और यौगिक क्रिया शब्द। यौगिक क्रिया शब्द मानेंगे तो क्रिया का अर्थ होगा फल, रूढ़ क्रिया शब्द मानेंगे तो अर्थ होगा भावना। तो उसी की बात हो रही है कि भू आदिओ धातव इत्यादि जो सूत्र है उसमें प्रायशः माने प्रायः जो है क्रिया शब्द न भावना व्यपदेशात्, क्रिया शब्द के द्वारा जो है भावना का ही व्यपदेश किया गया है, भावना को ही बताया गया है, भावना का ही व्यवहार किया गया। तत्र तस्य सांकेतिकी शक्ति ही, तत्र माने भावना अर्थ में, तस्य माने क्रिया शब्द से, भावना अर्थ में क्रिया शब्द की सांकेतिकी शक्ति है, माने संकेत के द्वारा शक्ति बताई गई है। अर्थात क्रिया शब्द जो है भावना अर्थ में रूढ़ है, ये तात्पर्य निकला। आगे कहते हैं कि फलांग से क्वाचित कहा, और फल अंश में माने फल अर्थ में क्वाचित कहा, माने कहीं कहीं पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्रियते इति क्रिया इति यौगिक प्रयोग, फल अर्थ में क्रियते इति क्रिया ये व्युत्पत्ति करते हैं और वह यौगिक प्रयोग है। तो इस तरह से दो प्रकार का प्रयोग हो गया, एक सांकेतिक शक्ति वाला क्रिया और एक यौगिक क्रिया शब्द। तो सांकेतिक शक्ति वाली जो क्रिया है वह रूढ़ क्रिया शब्द है, और क्रियते इति क्रिया वाला जो शब्द है फल अर्थ वाला वह यौगिक क्रिया शब्द है। अब इसको जो ना, जिसको सांकेतिकी शक्ति वाला क्रिया शब्द मैंने बोला है उसको आप संज्ञा शब्द भी बोल सकते हो, तो वही कहते हैं कि आगे तथा च संज्ञा शब्दस्य अनपेक्ष्य प्रवृत्तत्वेन बलवत्वात् भावनान्वय एव साधुता लभ्यते। ताकि ये जो यौगिक शब्द है और जो रूढ़ शब्द है इसमें बलवान कौन है दोनों में, तो कहते हैं कि बलवान जो है वह रूढ़ शब्द ही होता है। कैसे बलवान होता है, रूढ़ शब्द माने संज्ञा शब्द ही जो है वह बलवान होता है। तो उसी प्रकरण में ये कह रहे हैं कि संज्ञा शब्दस्य अनपेक्ष प्रवृत्तत्वेन बलवत्ता, माने संज्ञा शब्द जो है रूढ़ शब्द जो है वो अनपेक्ष प्रवृत्त होता है, माने कि बिना प्रकृति प्रत्यय के अर्थ की अपेक्षा किए ही प्रवृत्त होता है, माने प्रयुक्त होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अतः बलवत्वात्, इसलिए संज्ञा शब्द जो है, रूढ़ शब्द जो है, वह बलवान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यद्यपि क्रिया शब्द जो है दोनों प्रकार के हैं, रूढ़ भी हैं यौगिक भी हैं, लेकिन रूढ़ जो शब्द होता है वो अनपेक्ष प्रवृत्त होता है, बिना प्रकृति प्रत्यार्थ की अपेक्षा के ही प्रयुक्त होता है, इसलिए वह बलवान है। और क्रिया का अर्थ भावना मान करके, और भावनान्वय एवं साधुता, और उसी में क्रिया एव अन्वय माने भावनया एवं अन्वय, भावना के साथ ही जो है उसका अन्वय होता है, तभी साधुता लभ्यते, तभी उसमें साधुता आती है। किसमें? ये जो आठ का प्रसंग है पहले का अष्टक का, उस अष्टक में तभी साधुता आएगी जब भावना में ही अन्वय होगा। तो कारिका में जो कह दिया ना क्रियया एवं अन्वय, तो क्रियया एवं अन्वय का फलेन एवं अन्वय ये अर्थ न लिया जाए, भावनया एवं अन्वय ये अर्थ लिया जाए, इसलिए इस तरह की व्याख्या कौन भट्ट ने यहाँ पर की। अब संज्ञा शब्द प्रबल होता है, रूढ़ शब्द प्रबल होता है, और यौगिक शब्द दुर्बल होता है, इसमें शास्त्रांतर का प्रमाण भी बता रहे हैं। शास्त्रांतर यहाँ पर कौन है? मीमांसा शास्त्र की बात बता रहे हैं। कहते हैं कि अतएव संज्ञा शब्द प्रावाल्यात, अन संज्ञा शब्द के प्रबल होने के कारण ही रथंतरम उत्तरा ग्रंथ पठित ऋक्षु एव गेयम न तु वेदे तदुत्तर पठ्यमान ऋक्षु इति नव में निर्णीतम। कहा कि मीमांसा दर्शन में नवम अध्याय में ये निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है? कि वहाँ पर उत्तरा शब्द जो है, उस उत्तरा, वह जो उत्तरा शब्द है वो भी दो प्रकार का होगा, एक रूढ़ उत्तरा शब्द और एक यौगिक उत्तरा शब्द। रूढ़ जब मानेंगे तो उत्तरा नाम का जो ग्रंथ है उसका बोध होगा, और जब यौगिक अर्थ लेंगे तो उत्तरा का अर्थ होगा कि उत्तरवर्ती पद्य के साथ या उत्तरवर्ती मंत्र के साथ, इस तरह का अर्थ होगा। तो वहाँ पर भी ये संशय आया कि उत्तरा शब्द का जो प्रयोग है मीमांसा में, अच्छा वेद में, उसमें उत्तरा से किसको लिया जाए? रूढ़ मान करके उत्तरा नामक ग्रंथ को लिया जाए, अथवा यौगिक मान करके उत्तरवर्ती मंत्र ऐसा अर्थ लिया जाए? उस इस तरह के की शंका होने पर नवम अध्याय में ये निर्णय लिया गया कि नहीं, रूढ़ जो शब्द होता है वह यौगिक शब्द की अपेक्षा प्रबल होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तरा ग्रंथ ही अर्थ लेना चाहिए। अब पंक्ति देखिए कि रथंतरम उत्तरा ग्रंथ पठितः ऋक्षु एव गेयम्। रथंतरम कहते हैं साम वेद जो है, साम वेद विशेष का नाम है रथंतरम। उत्तरा ग्रंथ पठितः माने उत्तरा ग्रंथ, देख रहे हैं ना यहाँ पर उत्तरा नाम का जो ग्रंथ है उसमें जो पठित ऋचाएं हैं, ऋक्षु एवं माने ऋचाओं में गेयम्। रथंतरम का पाठ कहाँ करना चाहिए? तो उत्तरा ग्रंथ पठित जो ऋक है, ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं में गेय है, माने उसमें रथंतर का गान करना चाहिए। यहाँ उत्तरा शब्द का अर्थ उत्तरवर्ती ऋचा नहीं लेकर के रूढ़ शब्द को प्रबल मानते हुए उत्तरा नाम का ग्रंथ लिया गया। वही कहते न तु वेदे तदुत्तर पठ्यमान ऋक्षु, यहाँ पर ये अर्थ नहीं लिया गया उत्तरा का कि वेद में जो उत्तरवर्ती पठ्यमान ऋचाएं हैं उसमें रथंतर गेय है, ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि ये निर्णय लिया गया कि रथंतर का गान कहाँ करना चाहिए, तो उत्तरा ग्रंथ में पठित जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं के साथ ही रथंतर का पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पर मीमांसा का भी जो है प्रमाण इन्होंने लिया कि मीमांसा में भी रूढ़ शब्द को ही प्रबल मान करके रूढ़ अर्थ को ही ग्रहण किया गया है, यौगिक अर्थ का ग्रहण नहीं किया गया है। आगे फिर कहते हैं कि किंच फलांशोपी भावनायाम विशेषणम। अब ये जो अभी आपने का साफ हो गया होगा कि क्रिया के दोनों अर्थ हैं, भावना भी अर्थ है रूढ़ मान करके और फल भी अर्थ है यौगिक मान करके। तो कुछ देर के लिए अगर मान लें कि कारिका में क्रियायै वाव धार्यताम में क्रियायै का अर्थ फलेन एव ऐसा ही अर्थ करना चाहिए, अगर ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहता है, ऐसी कोई शंका करता है, तो उसका भी खंडन करते हैं कि नहीं, यहाँ क्रिया का अर्थ फल आप ले ही नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? तो कहते हैं कि फलांशः अपि भावनायाम विशेषणम्, कि फल जो होता है वह भावना में विशेषण बनता है। आप जानते हैं ना, फले प्रधानम व्यापार, कहा था ना कि फल और व्यापार के बीच में व्यापार प्रधान होता है, माने व्यापार विशेष होता है और फल विशेषण होता है, और जो विशेषण होता है वह अप्रधान होता है, गौण होता है। तो इस तरह से फल अर्थ इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे कि फलांशोपी भावनायाम विशेषणम, फल अंश जो है, माने धातु के दो अंश हैं, फल अंश और व्यापार अंश, तो फल अंश जो है वह तो भावना अंश में विशेषण बनता है। कारकानी अपि क्वचित तथा भूतानी, और कारक भी जो होते हैं वो क्वचित, क्वचित का यहाँ अर्थ लेना है कि कर्त प्रत्यय संभिव्याहारे, आसानी में समझें तो कर्तृवाच्य कर लीजिए कि कर्तृवाच्य में कारकानि अपि तथा भूतानि, कारक भी जो होते हैं वो तथाभूत होते हैं, तथाभूत माने वैसे ही होते हैं, कैसे, जैसे फलांश जो है व्यापारांश में विशेषण होता है, उसी तरह से कारक भी जो है वह व्यापार में भावना में विशेषण होता है। इस तरह से दोनों विशेषण हो गए, फल भी विशेषण हो गया, कारक भी विशेषण हो गया। तो विशेषण का विशेषण में अन्वय, अप्रधान का अप्रधान में अन्वय नहीं होता, बल्कि अप्रधान का अन्वय प्रधान में होता है, विशेष में होता है, यही कहना चाह रहे। तो फिर से पंक्ति में चलते हैं, किंच कि अगर कोई ये कहे कि क्रिया का अर्थ फल ही लेना चाहिए, तो उसके लिए बता रहे हैं कि फलांश अपि भावनायाम विशेषणम, फल अंश जो है धातु का, मन धातु के अर्थ के जो का जो फल अंश वाला अर्थ है वह भावना अर्थ में ही विशेषण होता है। कारकानि अपि क्वचित तथा भूतानि, कर्तृवाच्य में कारक भी जो है तथाभूत होते हैं, माने भावना के विशेषण होते हैं। इति गुणानां च परार्थत्वात् असंबंधः समत्वात् स्यात् इति न्याय है ना, यह न्याय है, जैमिनी सूत्र है ये। तो युक्ति को न्याय शब्द से भी कहा जाता है। तो जैमिनी का जो ये सूत्र है, तीसरे अध्याय का पहले पाद का वैश्वा सूत्र है ये, इस सूत्र में ये कहा गया है क्या कि गुणानां च परार्थत्वात्, जो गुण होते हैं माने जो अप्रधान होते हैं वह परार्थ होते हैं, पर से ले लीजिए विशेष्य को, वो विशेष्य के वास्ते होते हैं, यही है परार्थत्वात्। गुण का अर्थ यहाँ विशेषण भी कर सकते हैं कि गुणानां च परार्थत्वात्, माने विशेषण जो होते हैं वो विशेष्य के वास्ते होते हैं, अथवा गुणानां च परार्थत्वात् का अर्थ कर लीजिए कि गुण जो होते हैं वह पर अर्थ के लिए होते हैं, माने गुणी के लिए होते हैं। असंबंध, माने असंबंध में अपनी ओर से जोड़ लीजिए, परस्परम असंबंध, माने गुण का गुण के बीच में परस्पर असंबंध होता है, संबंध नहीं होता, माने गुण गुणी के को बताता है, गुण कभी गुण को नहीं बताता है। क्यों? तो गुणान असमत्वात्, क्योंकि दोनों दोनों में समत्व रहता है, क्योंकि एक गुण है और दूसरा गुण है, तो दोनों में समत्व आ गया ना, समानता आ गई, तो समानता होने के कारण एक गुण का दूसरे गुण के साथ असंबंध होता है, माने संबंध नहीं होता है, और गुण और गुणी ये दोनों समान नहीं है, तो इसलिए गुण गुणी को बताता है, गुण गुण को नहीं बताता है। गुण का संबंध गुणी के साथ होता है, गुण का संबंध गुण के साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो समत्वात्, माने गुण और गुण में समत्व होने के कारण, समता होने के कारण परस्पर संबंध का अभाव होता है, ऐसा जैमिनी सूत्र में बताया गया है। तो इस न्याय के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि फल अंश जो है वह भी गुण है, और कारक जो है वह भी गुण है, तो गुण का गुण के साथ माने कारक का फल रूपी क्रिया के साथ असंबंध होगा, संबंध नहीं होगा। किसके साथ होगा? गुणी के साथ संबंध होगा। वह गुणी कौन है? तो व्यापार है, भावना है, उसी के साथ उसी में उसका अन्वय होगा। इति न्यायना, तो इस तरह से विशेषण में विशेषण का अन्वय नहीं होता, विशेषण का विशेष में अन्वय होता है, गुण का गुण के साथ अन्वय नहीं होता है, गुण का गुणी में ही अन्वय होता है, ये कह करके मीमांसा दर्शन की बात बता करके अब लौकिक बात भी बताते हैं, व्यावहारिक बात भी बताते हैं। कहते हैं कि सर्वे सेवका राजानम इव भावनायाम एव परस्पर निरपेक्षानि अन्वयन्ति, कहा कि सेवक लोग सेवक होते हैं और राजा होते हैं, तो सेवक में आपस में विरोध होने पर भी राजा आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे सारे सेवक चलते हैं। माने परस्पर जो है संबंध नहीं रहता है सेवक का, फिर भी राजा अगर हो सामने में तो उसके पीछे पीछे सारे सेवक हो लेते हैं। ऐसे ही जैसे सेवकों में परस्पर संबंध के अभाव होने पर भी राजा जो प्रधान है उसके साथ उसका अन्वय होता है, इसी तरह से विशेषणों का परस्पर असंबंध होने पर भी विशेष्य जो प्रधान है उसके साथ अन्वय होता है। अब पंक्ति देख लीजिए, सर्वे सेवकाः राजानम् इव, सारे के सारे सेवक जैसे राजा के पीछे पीछे चलते हैं उस तरह से भावनायाम एव, भावना में ही व्यापार में क्रिया में ही जो है परस्पर निरपेक्ष जो विशेषण है वह अन्वयन्ति, उसका अन्वय किया जाता है अथवा उसका अन्वय होता है। अब एक और व्यावहारिक बात कह रहे हैं उदाहरण के तौर पर, नहीं भिक्षु को भिक्षुकांतरम याचितुम अर्हति सति अन्यस्मिन अभिक्षुके, भिक्षुक समझते हैं ना भिखारी, तो मान लीजिए कि एक भिखारी है और भिखारी के पास दूसरा जो है ना दान देने वाला व्यक्ति भी खड़ा है, तो भिखारी भी खड़ा है और दान देना देने वाला व्यक्ति दूसरा जो है वह भी खड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई तीसरा भिखारी आता है तो वो किससे मांगेगा, सामने खड़ा जो भिक्षुक है उससे मांगेगा या सामने जो खड़ा दाता है उससे मांगेगा? तो स्वाभाविक है कि जो दाता है उसी से मांगेगा, भिक्षुक से नहीं मांगेगा। वही कह रहे हैं कि नहीं भिक्षुक भिक्षुकांतरम याचितुम अर्हति, एक भिक्षुक जो है भिक्षुकांतर से माने अन्य भिक्षुक से न याचितुम अर्हति, याचना करने नहीं करता है। कब? तो सती अन्यस्मिन अभिक्षुके, यदि वहाँ पर कोई अभिक्षुक विद्यमान हो, कोई दाता भिक्षु से भिन्न, भिक्षुक से भिन्न अगर कोई व्यक्ति वहाँ विद्यमान हो तो उससे याचना नहीं करता है। तो इति न्यायेन अपि, इस लौकिक न्याय से भी फलम त्यक्त्वा भावनायाम एव अन्वयन्ति मीमांसकाः अपि मन्यते, इसलिए फल जो है वह भिक्षुक के स्थान पर है और भावना जो है वह अभिक्षुक के स्थान पर है और कारक जो है वह अन्य भिक्षुक है। इस तरह से कारक रूपी जो भिक्षुक वह फल रूपी भिक्षुक के साथ अन्वित नहीं होगा, वह भावना रूपी अभिक्षुक के साथ ही अन्वित होगा। इति मीमांसका अपि मन्यते, ऐसी बात जो है मीमांसक लोग भी मानते हैं, क्योंकि मीमांसकों के यहाँ भी जो है भावना मुख्य विशेषक ही शाब्द बोध होता है। इस तरह से जो कह रहे थे कि क्रिया का अर्थ फल ही कर लेना चाहिए तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि मीमांसा का भी इन्होंने प्रमाण दिया और लौकिक उदाहरण भी दिया, सेवक राजा वाला और भिक्षुक वाला, इन कारणों से यहाँ पर क्रिया का अर्थ भावना ही करना चाहिए, फल नहीं करना चाहिए। आज का पाठ यहीं विश्रांत करते हैं।